तो कंस के द्वारा 6 बालक मारे गए। अब 7वें बालक जो है, यहां कहा हतेषु षट्सु बालेषु देवत्या उग्रसेना। सुदेव जी कहते हैं कि उग्रसेन पुत्र के द्वारा, उग्रसेनी के द्वारा ये 6 बालक मारे गए। तुमने उग्रसेनी क्यों कहा? बोले ऐसे आचार्य का नाम भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए उग्रसेनी कहा। कंस का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने। बोले बार बार कंस भगवान को नाम का, भगवान का नाम भी लेना चाहिए। उग्रसेन अच्छे थे तो उग्रसेन का पुत्र ये कह दिया उग्रसेन का। तो सप्तमो वैष्णव धाम यमनंतम प्रत्यक्षते गर्भो बभूव देव क्या हर्षोद्विवर्धन। कहते हैं जब कंस ने जब 6 बालक मार डाले तो देवकी के 7वें गर्भ में वैष्णव धाम, यहां वैष्णव धाम का, तो वैष्णव धाम का अर्थ टीकाकारों ने किया है भगवान के अंश, अंश स्वरूप। वैष्णव कृष्ण ने कारण विश्वास किया है। वो कहते हैं कि जो भगवान की सैया बने, भगवान के छत्र बने, भगवान का व्यजन बने, ये फणों से हवा करते हैं, अपने ऊपर भगवान को सजाते हैं, भगवान को अपने अंदर बसाते हैं, आश्रय देते हैं, तो ये भगवान के आश्रय स्थान है अनंत अनंत। इसलिए कि इनकी सेवा का कभी अंत नहीं होता। अनंत माने जिनका कभी अंत न हो, अनंत में से जो निकले वो भी अनंत। तो ये अनंत भगवान, इनकी सेवा अनंत। तो ये 7वें गर्भ में ये अनंत आए, शेष जी आए, इसलिए भी आए ये भाई रामावतार में तो ये छोटे भाई रहे लक्ष्मण जी, तो छोटे भाई रहे इसलिए आज्ञा देके काम नहीं करवा सकते। लेकिन बलदेव जी जरा अपने हाथ में हुकूमत लेकर के बोले मैं बड़ा भाई होके जाऊंगा तो अच्छी सेवा कर सकूंगा। इस भाव से ये पहले ही देवकी जी के गर्भ में आ गए। तो अब भगवान ने देखा कि ये तो 7वें गर्भ में आ गए और कहीं कंस ने इनको मार दिया। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदूनां विजनाथानां योग मायां समादिशत् गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोवर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविग्ना विमरेषु वसन्ति देवत्या जठरे गर्भम शेषाक्षम धाम मानकम महोदयी बात तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय अथा मंश भागेन देवक्रिया पितृताम शुभे प्राप्स्यामि तुम यशोदायां नंद पत्न्याम भविष्य। भगवान विश्वात्मा है, सारे विश्व की आत्मा है। भगवान के मन में कोई भी दुविधा नहीं आती, भय शोक नहीं आता। पर एक भगवान का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है, ये समझने की बात है। भगवान के लीला में न तो दंभ है और न उनके मन में किसी प्रकार की कोई कामना है। ये भगवान जो माता पिता के साथ, सखाओं के साथ, गाय वत्सों के साथ, श्री गोपांगनाओं के साथ जो लीला करते हैं, इसका अर्थ माया नहीं और इसका अर्थ दंभ नहीं, लोग दिखाओ नहीं। वास्तव में भगवान प्रेम परवश है और प्रेम परवशता में कभी भय की लीला, कभी भय की लीला, कभी विषाद की लीला, कभी क्रोध की लीला, कभी काम की लीला, ये सब करते हैं और ये सचमुच करते हैं। स्वयं ही विषाद बन जाते हैं, स्वयं ही क्रोध बन जाते हैं, स्वयं ही भय बन जाते हैं, स्वयं ही शोक बन जाते हैं। तो इनमें किसी भय का अगर आवेश हो तो ये भय इनका प्रेम परवशता का एक रूपभूत लक्षण है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। ये आगे आवेगा दशम अध्याय में कि भगवान ने मटकी को फोड़ डाला क्रोध से। क्रोध आया तो वहां टीकाकारों ने बताया है कि अगर क्रोध में केवल खेल होता, नाटक होता, तो नाटक तो कुछ देखने वालों के सामने होता है, वहां दर्शक कोई था नहीं, अकेले ही थे, तो अकेले में भांड क्यों फोड़ा। तो क्रोध आया था जरूर, फिर भागे, उस समय मैं आ ही नहीं थी तो भागे क्यों, भय हो गया था मन में, रोए क्यों, डर लगा था। तो ये सब चीजें भगवान में न तो नाटक है और न मन में भाव हो रही ऊपर से दिखावे, तो क्या ये भक्तों के साथ फिर छल करते हैं? फिर तो सारे भक्तों को ठगने वाले बन गए, झूठा खाली ऊपर से प्रेम दिखाया और प्रेम मन में है नहीं, तो ये तो दंभ करने वाले, ऐसे दंभी भगवान को कौन भजे। तो भगवान का न दंभ होता है, न भगवान का नाटक होता है, न भगवान की लोग दिखाओ की बात होती है, और न माया से केवल दिखर हो नहीं, नहीं बात। यहीं पर भक्तों का और विचारकों का मतभेद होता है, वो कहते हैं हुआ मान लेते हैं पर ये सब माया है, ये सब माया में हुआ। वो कहते हैं ये माया नहीं, लीला है। माया कैसे लीला है? लीला से ही भगवान प्रकट हुए, लीला से ही वो पुत्र बने, लीला से ही वो भाई बने, मित्र बने, स्वामी बने, प्रियतम बने, सखा बने, और वैसा ही वो स्वयं बने। उन्होंने स्वयं अनुभव किया वहां पर, जहां भूख लगी वहां भूख लगी। ये विचित्रता है कि ये प्रेम राज्य जो है ये भगवान में भूख लगा देता है, भगवान में भय पैदा कर देता है, भगवान में विषाद पैदा कर देता है, भगवान में क्रोध पैदा कर देता है। ये क्रोध काम भय विषाद भी भगवान में आकर धन्य हो जाते, नहीं तो बेचारे ने स्वयं नरकों में जाए और सबको नरकों में ले जाए, इन विचारों का जीवन धन्य कैसे हो। प्रत्येक का जीवन धन्य करना है, इनको भगवान ने ये लीला राज्य में अपनाया। क्रोध से कहा आज तुम आ जाओ भैया, तुमको धन्य करना है, तुम्हारे साथ ब्रह्म संस्पर्श हो जा। क्रोध को ब्रह्म संस्पर्श हो गया, क्रोध धन्य हो गया, क्रोध आज निर्मल हो गया। तो भगवान ने के मन में आया कि कहीं कंस दूसरों को मारता है ना, तो ये मेरे जो यदुवंशी हैं ये तो मुझे को अपना मांगते हैं, सर्वस्व मेरे को, यदुना निजुना था ना, ये तो मुझको ही अपना स्वामी मानते हैं, मेरे ही हैं, तो ये कहीं सताए न जाएं। और ये अनंत भगवान के संबंध में भी तो उन्होंने तुरंत योग माया को याद किया। योग माया ये जो भगवान की खास शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं भला, शक्ति अगर न रहे तो शक्तिमान की सत्ता नहीं, और शक्तिमान न हो तो शक्ति रहे कहां। तो भगवान की योग माया उनकी अपनी स्वरूप भूता शक्ति है, इसी को लेकर के वे अवतार लेते। संभवा नात्माया आत्माया, माया नहीं आत्माया, लीलया कृपया। तो ये भगवान जो अपनी शक्ति से आप ही अवतरित होते हैं, यहां शक्ति को उन्होंने अपनी शक्ति से कहा योग माया, योग ईश्वरी। भगवान ने कहा शक्ति को बुला करके कि देवी कल्याणी तुम जाओ ब्रज में। अब वो ब्रज कैसा है कि गोप गोप गोभर लंकृतम, बड़ा सुंदर दिया कि वो ऐसा सुंदर लोक है कि जहां पर ब्रज में ग्वाले और गायें हैं उनके द्वारा शोभित है। कहीं ऐसा नाम नहीं लिया, किसी बड़े ऐश्वर्य का नाम नहीं लिया, अलंकृत है। ये नहीं कहा कि वहां वो रहते हैं, वो जो ब्रज है मेरा वो ब्रज गायों के द्वारा और गोपों के द्वारा सुसज्जित है, गहने हैं वो उसके, वे अलंकार हैं, उन अलंकारों के द्वारा वो अलंकृत है मेरा ब्रजदेश, तुम वहां जाओ। और ये कंस के भय से वसुदेव जी की रानियां भी जहां तहां भेज दी गई थी, तो वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी और यशोदा जी में बड़ा आपस में प्रेम स्नेह था, तो रोहिणी जी जो हैं ये वहां ब्रज में वास करती हैं, और भी पत्नियां जो इनकी थी वो डर कर चाहे जहां गुप्त स्थान में रहती हैं। इस समय जो मेरा धाम है, जो मेरा निवास स्थान है, जिसमें मैं रहता हूं, जो मेरी सेवा का मूर्तिमान रूप है, वो धाम मामकम, वो मेरा धाम, वो मेरा अंश शेष देवकी के उदर में समय आया हुआ है, तो तुम एक काम करो, उसको वहां से निकाल के रोहिणी के उदर में रख दो, और फिर मैं अंश भाग ले रहा, अंश भाग में रह जाएगा, अंश भाग है ना, अंश भाग के कई अर्थ करते हैं, बड़े विस्तृत श्रीधर जी ने तो 6 अर्थ किए, ये वैष्णव तोषणी के कारण भाग का जो अर्थ करते हैं वही कह देता हूं, हैं कि पूरे रूप में नहीं अवतीर्ण हुए यहां भगवान, मैंने जो केवल विशुद्ध वात्सल्य का भाग था, मेरे माधुर्य का, वो विशुद्ध भाग अलग रखा, उससे तो वो यशोदा जी के यहां जाकर के अवतीर्ण हुए, ऐसा मानते हैं यशोदा जी के यहां भी और देवकी जी के यहां भी समकाल में दोनों जगह भगवान का अवतार हुआ। ये आगे 5वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन होगा। जाता लहादो महामना आत्मज उत्पन्न, आत्मज उत्पन्न ने कहा, तो सुखदेव जी बोलते हैं ना, कहीं यही बोलते कि भाई वो वहां आ गए मथुरा से आए हुए, ये तो नहीं कहा, आत्मज उत्पन्न ने कहा, तो सुखदेव जी का संकेत है इसमें, तो अंश भागे का अर्थ इन्होंने ये किया कि ये अंश भाग जो है, अंश भाग से पूर्णांश से इनको भगवान पूर्ण ही है, पर यहां माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित रूप से अवतार, उनका अर्थ यह है कि ये ज्ञान बल क्रिया, ये जो भगवान की शक्तियां हैं, इन शक्तियों को साथ लेकर के भगवान वहां पर अवतीर्ण हुए। तो भगवान ने कहा, फिर कोई ने कहा कि ये बलदेव जी के साथ भी वो दूसरे से आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, तो वो कहते हैं कि हे कल्याणी देवी, अब मैं अपने सारे अंशों के साथ, ज्ञान अंश, बल अंश, क्रिया अंश, इच्छा अंश, ऐश्वर्य अंश, इन सब अंशों के साथ मैं देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा के पुत्र यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, या अंश भाग गया ना, तो वहां भी जाऊंगा और तुम वहां भी जन्म लेना। इसके बाद बोले महाराज, फिर क्यों अब उसको किसी को कोई काम भेजे तो उसके लिए इनाम पहले से निश्चित, यह तो भगवान के स्वरूप होता ही, पर किसी से काम जो खाली काम ही बता दे उसको, तो काम करने वाले को तो काम ही करना है, उसको कोई लेना देने की उसकी इच्छा नहीं, पर काम बताने वाले का ये कर्तव्य होता है कि वो तुम्हें क्या देंगे, कोई बड़ी बड़ी चीज बता दे। तो भगवान ने कहा कि अतिशंत मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम धूपोपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदान नाम ध्येयान कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गे की भद्रकाली थी विजया वैष्णवी थी च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेत च माया नारायणी शानी शारदीय चंबिकेत च गर्भ संकर्षणात्म वही प्राहु संकर्षण भूवि राम दुलोक रमणाथ बलम बलवत्त। कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर के ये मेरा काम करो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम मेरी शक्ति हो ना, मेरे समान तुम में बात आनी चाहिए तो तुमको जो पूजेंगे, ये विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल में आके रहे, तुमको जो पूजेंगे वो मुंह मांगा वरदान पाएंगे, तुम जो कह दोगी वो सत्य हो जाएगा। सर्व काम वर प्रदान, जिसके मन में जो कामना, उन सारी कामनाओं को तुम पूर्ण करने में समर्थ हो जाओगे। और इसलिए तुमको समस्त कामना देने वाली सर्व काम वर प्रदान जान करके, सर्व काम वरेश्वरी समझ करके, और सब लोग तुम्हारी धूप दीप नैवेद्य और सामग्रियों से पूजा करें। तुम जगत में पूजनीय होगी और जगह जगह पर देवी के स्थान बनेंगे, भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा का प्रचार होगा। और तुम्हारे ये नाम होंगे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका इत्यादि तुम्हारे बहुत से नाम होंगे। जगह जगह तुम्हारे पूजा के स्थान होंगे और लोग तुम्हारी पूजा करके मन चाहा फल प्राप्त करेंगे। और जो तुम देवकी के गर्भ से खींचकर जिनको रोहिणी के गर्भ में रखोगी, खींचोगे तो खींचे जाने का उनका नाम होगा संकर्षण। और वो बड़े बलदेव जी बड़े सुंदर रहे और बलदेव जी सब लोग बड़े खुश थे। तो ये लोक रंजनता के कारण से, लोक रमणाद, लोगों को सुख देने वाले होने के कारण से लोग इनको राम कहेंगे। लोक रमणाद, लोगों को रमाएंगे, ये सुख देंगे, इसलिए इनका एक राम, एक राम नाम होगा। और तीसरे, ये बलवानों में अद्वितीय होंगे, बड़े श्रेष्ठ बलवान, इसलिए लोग इनको बल कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। ये तीन नाम होंगे, तुम जाओ। तो बस संदिष्ट एवं भगवता तथेत्यो मिति तद्वचन प्रतिग्रह्य परिक्रम्य। तो भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके अपने भगवान के परिक्रम स्वीकार किया और पृथ्वी लोक में आ गई। और जो कुछ भगवान ने आज्ञा दी थी उस प्रकार ले जाकर रोहिणी जी के उधर में स्थापन कर दिया। लोगों को क्या पता कि ये दशा हुई है, तो बेचारे लोग जो हैं पूर्वा चिंता करने लगे, बोले छह बालक तो मारे गए, तुम्हारे पात हो गए। लोगों के मन में बड़ी देवी का गर्भ नष्ट हो गया देख करके पूर्वासी आपस में चिंता करने लगे, बात करने लगे। भगवान विश्वात्मा है, भगवान का कहीं आना है नहीं, वो सदा सब रूपों में वर्तमान ही। पर जहां भगवान को खास तौर पर कृपा करनी पड़ती है, करते हैं, वहां वे विशेष रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं। अंशांश भागेरा, भगवान जो हैं अपनी सारी कलाओं को लेकर, इसका अर्थ किया है लोगों ने कि ये भगवान का जब स्वयं अवतार होता है, किसी ने कहा कि ये भगवान नारायण का केशावतार है, किसी ने कहा मैत्रेया अवतार है, किसी ने क्षीर सागर साई विष्णु का अवतार माना। तो कहते हैं कि ये जब स्वयं भगवान आते हैं तो दूसरे दूसरे काम जितने होते हैं, जो और शक्तियों के द्वारा होने वाले, वे सब काम भी उनके साथ अपने आप ही हो जाते हैं। उन सब कामों को करने वाली जो योजना है वो भी उनके साथ लग जाती है। तो वो नारायण अवतार भी और केशावतार भी और विष्णु अवतार भी, अंशावतार भी, आवेशावतार भी, जितने जहां पर आवश्यक होते हैं वे सब उनके साथ ही आते हैं। राजा आप आ गया तो मंत्री मंत्री सब आप अपने आप ही आ जाते हैं। बड़ा काम करने को तो एक आया, आप छोटे मोटे काम हो जाती है उसके साथ ही होता अनायास। तो ये जो कंस का अथवा राक्षसों का विध्वंस है, ये कोई भगवान के अवतार का खास कारण नहीं है, इनके लिए तो जो शक्तिमान है उनका अवतार होता है। ये स्वयं भगवान जो आते हैं ये तो प्रेम परवश आते हैं, भक्तों के प्रेमियों के प्रेम का जब ये तकाजा होता है कि उन्हें शक्ति नहीं चाहिए, उन्हें बल नहीं चाहिए, रक्षा नहीं चाहिए, मर जाए कोई बात नहीं, रक्षा चाहने वाले के लिए रक्षा करने वाले आते हैं और रक्षा करने वाले सशस्त्र आते हैं। इसलिए यहां दो रूपों का वर्णन आवेगा आगे विश्वभूषणिकार के अनुसार, एक शस्त्रास्त्रधारी चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए कंस के कारागार में, वो रक्षा करने वाले जो तीन पहले के जन्मों में आश्वासन दे चुके वसुदेव देवकी को पहले, वे भगवान, और एक यशोदा की गोद में खेलने वाले यहां शस्त्रास्त्र नहीं रहे, मुरली मनोहर द्विज ये भगवान। तो एक भगवान होते हैं मुरली मनोहर द्विभुज केवल प्रेम रस सागर, एक भगवान है चक्रधारी सुदर्शनधारी कमल भी हाथ में है, बड़ा सुंदर शंख भी है जिससे ज्ञान की घोषणा करते, ये शंख नहीं बजाते और न चक्र किसी को दिखाते हैं न गदा का आघात करते हैं। ये तो अगर किसी का कुछ करते भी हैं, लेते देते भी हैं, छीनते छानते भी हैं तो मुरली बजाकर छीनते हैं, अपना स्वरूप सौंदर्य दिखाकर के ही छीनते हैं। तो भगवान का जो ये अवतार है ये दो भाव से अवतार किसी के होते हैं, एक प्रेमा अवतार है और एक भगवान का शक्त्या अवतार है। तो ये बात नहीं कि जहां प्रेमावतार में शक्ति नहीं है, यहां भी बीच बीच में ऐश्वर्य प्रकट होता है प्रेम की सेवा करने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि वहां शक्त्यावतार में प्रेम नहीं है, भगवान नित्य पूर्ण है ना सब तरह से, लेकिन जहां बिल्कुल प्रेम है वहां प्रेम की प्रधानता है और जहां शक्त्या अवतार है वहां ऐश्वर्य की प्रधानता है। ऐश्वर्य नहीं भय, यहां तो भय हट जाता है, वहां से भय भगवान, वहां से तो भय के मारे भगवान भाग ही आए, और यहां भय देने वाले जो आए उन सबको गति दे दी, भय देने वाले यहां आए पर ये डरे नहीं तो गोद में चले गए। ये कथा आवेगी जब पूतना आई और वो लक्ष्मी जी इसके समान रूपवती बन करके आई बड़ी सुंदरी, तो ये सब गांव वालों ने देखा कि ये नंद बाबा के यहाँ जो बच्चा हुआ है ना वो कोई बड़ा भाग्यवान बच्चा है और ये नारायण की कृपा से मिला है उनको, ये नारायण के सब उपासक रहे यशोदानंद बाबा। तो बोले ये लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी वरदान देने आती आया करती है, ऐसी आया करती थी तो वो कभी कभी दिख जाता था इन ब्रजवासियों को कुलवासियों को। पूतना आई सज धज करके बड़ी लक्ष्मी जी बनकर, तो उन्होंने समझा जी कि लक्ष्मी जी आई ये वरदान देने आई थी, तो किसी ने रोका नहीं, नंद के द्वारपालों ने भी नहीं रोका, बोले ये तो लक्ष्मी जी आई है और बता दिया, बोले वो प्रसवागार वहां है माता जी, आप वहां जाइएगा उस तरफ बाई तरफ जाइएगा, वैसे घर ऐसे बना हुआ है, बता के भिजवा दिया उनको। क्या भगवान जानते नहीं थे कि पूतना है, मारने आए थे, जिघांसया हिंसा करने की वृत्ति से आई थी, पर भगवान उससे डरे नहीं, माँ को प्रेरणा की, यशोदा को यशोदा मैया ने देखा ये तो लक्ष्मी है ना, तो बच्चे को प्यार करके बरदान दे देगी, तो उठा के गोद में दे दिया, भय से भागे नहीं, भय के गोद में चले गए और भय को भय शून्य कर दिया, अपनी गति दे दी, माँ की गति दई जाए कृपाल जादव राय। तो ये भगवान का जो प्रेमावतार ये ब्रज का, शक्त्या अवतार ये मथुरा का। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मैं जब ये अवतार लेता हूँ तो सारी कलाओं को, सारी शक्तियों को, सारे अंशावतारों, आवेशावतारों, नारायण अवतार, मैत्रेय अवतार, विष्णु के अवतार, क्षीर सागर साई के अवतार, इनके जितने काम हैं वो सारे उस मेरी शक्ति के अंदर आकर सन्निहित हो जाते हैं। तो उन्होंने, भगवान ने अब सोचा कि ये अब अवतार लेना है, तो अपने अंशांश भागे न सारे अंशों को लेकर के भगवान क्या किया उन्होंने, कि वसुदेव जी के मन में आ गए, मन आने के बिंदु अभिवेश, मन में प्रवेश किया। ये भगवान उनके शुक्र में प्रवेश नहीं हुए, ये जो सृष्टि है भगवान का उदय, ये सृष्टि नहीं, सजन नहीं, आविर्भाव है। भगवान वसुदेव जी के मन में आ गए, अपने उनको मन में दिखाई दिया कि भगवान आ गए। भगवान उनको मन में दिखे प्रत्यक्ष, भगवान ने मन में प्रवेश किया। संसार में जो संतान की उत्पत्ति होती है वो शुक्र के अंदर वो कीटाणु होते हैं जो संगठित होकर के किसी एक शरीर को, देह को पैदा करते हैं और वो कर्म बश आते हैं। यहाँ जो भगवान का अवतार होता है इसमें तीन बात, स्वेच्छा होता है, कर्म कारण नहीं होते, और पांच भौतिक देह नहीं। स्वेच्छा में संतुभूतमय से गोपी, ये भगवान का जो अवतार है ये स्वेच्छामय है, भूतमय नहीं, पांच भौतिक नहीं। तो ये भगवान का जो शरीर है ये शरीर माता के गर्भ में बनता नहीं, बनता होता तो ये आगे आवेगा। चतुर्भुज कैसे प्रकट होते वहां पर, बालक रूप में चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म में लिए, बिल्कुल नई चीज, आज तक सुना नहीं किसी ने। इस प्रकार से भगवान मन में आते हैं, मन में आकर के माता के उदर में प्रतिष्ठित होते हैं मन ही से, और फिर आविर्भूत होते हैं, लोगों को दिखाई देता है ये भगवान का जन्म हुआ, इसीलिए वो अजन्मा का जन्म है। अजोपसन्नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपसन्न प्रकृति में स्वामिष्टा या संभवा आत्मायया, ये भगवान आत्मायया प्रकट होते हैं, अपने स्वभाव को लेकर, प्रकृति को लेकर, अपने स्वरूप को लेकर प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो इन्होंने वसुदेव जी के अंदर प्रवेश किया, मन में प्रवेश किया, तो सब विभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानु यथा रवि दुरासदोज दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। ऐसे कि भगवान जब अंदर आए तो ये केवल माया नहीं थी कि उसको माया से ऐसा प्रतीत हुआ वसुदेव को, या वसुदेव जी के कल्पना हो गई कि भगवान आ गए, ऐसा नहीं, वास्तव में भगवान प्रवेश कर गए अपने सारे तेज को लेकर के। वो जो अव्यक्त थे वो वसुदेव के मन में व्यक्त हो गए, वसुदेव जी को दिखने लगे। और क्या हुआ कि जब वो ज्योतिर्मय भगवान अंदर प्रविष्ट हुए